नमस्कार भारत, 31 अक्टूबर बुधवार। मैं हूं आदर्श राठौर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लिए जाने के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण।
सरकार बोल रही है कि सब देंगे, ये देंगे, वो देंगे, जब मिलेगा, जब मिल जाएगा, पर अभी तो सब घबराए हुए हैं।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी से मांगी सम्मानजनक सीटें, क्या है इस मांग के मायने?
आज की परिस्थिति में सम्मानजनक की क्या परिभाषा आरएलएसपी के लिए हो सकती है, आप लोग खुद भी इसका आकलन कर सकें।
जानेंगे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को अपनी उपलब्धि बता रही राजस्थान की बीजेपी सरकार पर क्यों उठे हैं सवाल, होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा के निर्माण और भव्य उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे कई लोगों को कथित तौर पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि नर्मदा जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आरएस निनामा ने कहा कि किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। डेनमार्क ने यूरोपीय संघ से ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की मांग की है। डेनमार्क ने दावा किया है कि ईरान उसकी धरती पर ईरान अरब मूल के कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रच रहा था, जिसे उसने नाकाम कर दिया। इस मामले में डेनमार्क की पुलिस ने नॉर्वे के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। इस शख्स के ईरान से संबंध होने की बात कही जा रही है। डेनमार्क की इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा कि ये शख्स ईरान के कहने पर डेनमार्क में रह रहे ईरान अरब मूल के एक कार्यकर्ता की हत्या करने की योजना ना रहा था। ईरान ने इन आरोपों से इनकार किया है। डेनमार्क के विदेश मंत्री एंडर्स सैमुएलसन ने कहा कि उन्होंने अपने राजदूत को ईरान से वापस बुला लिया है। ईरान में डेनमार्क के राजदूत को हमने वापस बुला लिया है ताकि उनसे इस मामले पर सलाह मशवरा किया जा सके। मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही कड़ा और असामान्य राजनयिक कदम है। ये थे डेनमार्क के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिचेल बैचलेट ने सऊदी अरब से जोर देकर कहा है कि वो पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या की जांच कर रही टीम में स्वतंत्र विदेशी विशेषज्ञों को भी शामिल करे। मिचेल बैचलेट ने सऊदी अरब से अपील की है कि वो बताए कि खाशोजी की लाश कहाँ है ताकि उनके शव की फॉरेंसिक जाँच हो सके। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के मुख्य अभियोजक से पूछा था कि इस्तांबुल स्थित सऊदी के दूतावास में खाशोजी की हत्या के आदेश किसने दिए। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार विभाग की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने कहा, According to Saudi Arabia itself, there were high-level officials who were involved in carrying out this. सऊदी अरब ने खुद बताया कि खाशोजी की हत्या में उच्च स्तर के अधिकारी शामिल थे, तो सऊदी अपने ही अधिकारियों के खिलाफ जाँच कर रहा है और ये जाँच उस शख्स के हत्या की हो रही है जो सऊदी अरब सरकार की आलोचना करते थे। इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि इस जांच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई व्यक्ति भी शामिल हो। हमने तुर्की और सऊदी अरब से जांच में सहयोग करने की अपील की है। ये थे संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार विभाग की प्रवक्ता के शब्द। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ पीटर्सबर्ग पहुंचे और यहूदियों के प्रार्थना गृह में हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। शनिवार को एक बंदूकधारी ने पूजा कर रहे 11 लोगों को मार दिया था। घटना के बाद ट्रंप के पीटर्सबर्ग दौरे का विरोध किया जा रहा था। एक यहूदी संस्था ने कहा था कि जब तक ट्रंप श्वेत राष्ट्रवाद की निंदा नहीं करते, यहाँ उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। इस नरसंहार को अमेरिका के इतिहास में हाल का सबसे भयानक यहूदी विरोधी हमला कहा गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने यमन में अगले 30 दिन में युद्ध विराम लागू करने की मांग की है। मैटिस ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि सभी पक्ष बातचीत की टेबल पर आएं और यमन में बम बरसाना बंद करें। यमन में पिछले 4 साल से यमन की सरकार का समर्थन कर रहे सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन और ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों में संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से वहां बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर।
हितेश भाई
आप क्या काम करते हैं?
होटल चला रहा है।
तो ये जो स्टैच्यू आपके इलाके में बना है उसके बारे में आपका क्या मानना है?
अच्छा है क्योंकि रोजगार मिलेगा सबको, और थोड़ा बुरा भी है कि सबको तकलीफ हो रही है कि घर छोड़ के जाना है, खेती छोड़ के जाना है, बरसों से रह रहे हैं, लेकिन सामने उसको काम भी मिलेगा और सरकार बोल रही है कि सब देंगे, ये देंगे, वो देंगे, जब मिलेगा जब मिल जाएगा। पर अभी तो सब घबराए हुए हैं कि भाई हमको इधर से भगा रहे हैं, इधर बरसों से रह रहे हैं।
आपके जीवन पे कुछ फर्क पड़ा क्या स्टैचू के काम से या उससे कुछ, या कोई?
हाँ,
आपके
पब्लिक का आना जाना बढ़ गया है और धंधे में भी फर्क पड़ गया है।
मेरा नाम मनीषा है, मैं गर्डे सर में हूँ। एक तरफ से देखा जाए तो सही भी है और गलत भी है। सबकी जमीन जा रही है, सब बरसों से रह रहे हैं, लेकिन उनके खेती कर रहे हैं, सब लोग गरीब है यहाँ पे, तो उनके लिए सब सरकार जो भी देंगे, लेकिन बोलते देंगे तब की या तब है, लेकिन बरसों से वहाँ तक जब रहते हैं तो पहले देना चाहिए ना।
उत्साह, नाखुशी, आशंकाओं और उम्मीदों के मिश्रण भरी ये आवाजें थी उस जगह के बाशिंदों की जहां बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के नर्मदा जिले में बनी दुनिया की इस सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। 2013 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और तभी से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री इसका अनावरण करने वाले हैं तब भी विरोध हो रहा है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कुछ देर पहले मैंने बात की गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास मौजूद बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा से और पूछा कि आखिर किन लोगों को हिरासत में लिया गया है।
जो यहाँ का प्रशासन है उन्होंने कुछ लोगों को कल यहाँ पर हिरासत में लिया था।
हिरासत में लिए गए लोगों की कुछ संख्या पता चली है रॉक्सी आपको?
जी, जो यहाँ के ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि करीब 80 से 90 लोगों को, पूरा जो जिला है नर्मदा जिला, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में से 80 से 90 लोगों को डिटेन किया है।
जैसा कि आपने बताया कि ट्राइबल लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, किस बात से नाराज हैं वो?
जी देखिए, इनका ये कहना है कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी उसके बाद में जो टूरिज्म डेवलप होगा इससे जो ट्राइबल कल्चर है वो ट्राइबल कल्चर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पहला तो उनका ये कहना है। और दूसरा उनकी ये भी मांग है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर जो उसके आसपास का डेवलपमेंट हुआ है, खास कर जो रोड वगैरह बनाए गए हैं उसको लेकर, जो आदिवासी जमीनों का संपादन हुआ है उन जमीनों को लेकर भी बहुत से आदिवासी समाजों के लोग जो हैं वो नाराज हैं। उनका ये कहना है कि हम उनको यहाँ से माइग्रेट कर दूसरी जगह भेजा जा रहा है, वो सही नहीं है।
ये तो वो लोग हैं जो नाराज हैं। आपने बहुत सारे लोगों से वहाँ पे बातचीत की, वहाँ पे जनता का मूड क्या है? बाकी लोग ऐसे भी हैं कुछ जो उत्साहित हैं?
जी, यहाँ पर बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको ये टूरिज्म डेवलपमेंट जो हो रहा है उससे उनको अच्छा लग रहा है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि डेवलपमेंट की वजह से पूरे विस्तार का डेवलपमेंट होगा और लोगों का विकास होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आने की संभावना है।
तो आज का क्या कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएंगे और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं वहाँ?
जी देखिए, आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अहमदाबाद से हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर आएंगे, और ये डिसाइड हुआ है कि वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, और जब वो लोकार्पण करेंगे तो एक भव्य यहाँ पर समारोह का इंतजाम हुआ है, और हेलीकॉप्टर से ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो 182 मीटर टॉल है, उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी और बाद में नरेंद्र मोदी वहाँ पर अपना भाषण देंगे।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा। विश्व की इस सबसे ऊंची मूर्ति में बहुत कुछ खास है। इसमें म्यूजियम के अलावा व्यूइंग गैलरी भी है जहां से दर्शक नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध और बगल की पहाड़ियों का नजारा देख सकते हैं। यहां पर एक वॉल ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है। इसके अलावा इसकी लंबाई कितनी है और इस पर कितना खर्च आया है, सुनिए हमारी सहयोगी सरोज सिंह और कमलेश मठेनी से।
सरदार सरोवर बांध पर बनकर तैयार हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति रिकॉर्ड रूप से 33 महीनों में बनकर तैयार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए 31 अक्टूबर 2013 को इसका शिलान्यास किया था।
यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी लंबाई 182 मीटर है, जो तकरीबन 60 मंजिल इमारत के बराबर है। 2500 करोड़ से अधिक लागत वाली इस मूर्ति को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड कंपनी ने बनाया है, जबकि इस मूर्ति के हाव भाव का खाका काफी शोध के बाद मूर्तिकार रामवी सुतार ने बनाया है।
रामवी सुतार ने इस मूर्ति के लिए तकरीबन 2000 तस्वीरों का अध्ययन किया और इतिहासकारों से बात की। इस मूर्ति के शिलान्यास की घोषणा के बाद गुजरात सरकार ने देश के 1,69,000 गांवों से मिट्टी और लोहा मांगा था, जिसके बाद लोगों ने लोहा और मिट्टी दान किया।
गांव से मिली मिट्टी की एक वॉल ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो मूर्ति परिसर में ही बनी है। इस मूर्ति पर बाहर कांसे की परत है, लेकिन इसके अंदर के भाग को सीमेंट और स्टील से भरा गया है।
182 मीटर की ऊंचाई वाले स्टैचू में 135 मीटर की ऊंचाई पर एक गैलरी बनाई गई है। इस गैलरी तक पर्यटकों को ले जाने के लिए 2 एलिवेटर भी लगे हैं। इस गैलरी में 200 दर्शक आ सकते हैं और इससे दर्शक नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध, उसका जलाशय और सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों को देख सकते हैं।
मूर्ति और गैलरी के अलावा इसके परिसर में म्यूजियम, ऑडियो विजुअल गैलरी है। गुजरात सरकार ने ऐसी सारी कोशिशें की हैं जिससे पर्यटक यहाँ खींचे चले आए और इसके बहाने नर्मदा जिले के पहाड़ी इलाकों का भी भ्रमण करें।
सरदार पटेल की मूर्ति के निर्माण को लेकर काफी चुनौतियां थीं, क्योंकि इसे नर्मदा नदी के बीचों बीच बनना था। इसके बावजूद यह मूर्ति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं का सामना कर सकती है। साथ ही रिक्टर पैमाने पर 6.5 की तीव्रता का भूकंप भी यह मूर्ति झेल सकती है।
नर्मदा नदी के बीच में जहां यह मूर्ति स्थापित की गई है, उसे साधु द्वीप कहा जाता है।
जमीन से इस द्वीप तक आने के लिए एक 320 मीटर लंबा एक डिजाइनिंग पुल तैयार किया गया है। इसके साथ ही नाव के जरिए भी वहां तक पहुंचा जा सकता है।
केवड़िया शहर से पर्यटकों के इस जगह तक पहुंचने के लिए गुजरात सरकार 3.5 किलोमीटर लंबा एक हाईवे भी बना रही है।
और अब गुजरात से रुख करते हैं बिहार का। बीते शुक्रवार को ऐलान तो बीजेपी और जेडीयू ने किया था कि वो बिहार में बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस ऐलान के बाद से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में हैं। कल उनके इस्तीफे की भी चर्चा रही। इस बीच कल उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी से सम्मानजनक सीटों की मांग की। सम्मानजनक सीटों से क्या मतलब है उनका और इस पर कुशवाहा के सहयोगी और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया क्या रही, सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बीते शुक्रवार यह ऐलान किया था कि बिहार में जब कुछ नए साथी जुड़े हैं तो गठबंधन के सभी पुराने दलों की सीटों में कुछ कमी आएगी। माना जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी दल रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस ऐलान से खुश नहीं है और इस वजह से ही अब तक एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। जबकि अमित शाह ने शुक्रवार को यह भी कहा था कि आने वाले 2-3 दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कल दिल्ली में बिहार भाजपा के प्रभारी सांसद भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने भाजपा से सम्मानजनक सीटों की मांग की है।
देखिए, हम फिर बताएंगे कि सीटों की संख्या हम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतनी जानकारी तो सब लोगों को है भी कि 3 सीटों पर पिछली बार हम लड़े थे और 3 सीटों पर हम जीते थे, यह सब लोगों को मालूम है ही। तो उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में सम्मानजनक की क्या परिभाषा आरएलएसपी के लिए हो सकती है, आप लोग खुद भी इसका आकलन कर सकते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुशवाहा की जदयू से नाराजगी भी सामने आई। उन्होंने सवाल किया कि जिस जदयू के कारण उन्हें सीटों की संख्या में नुकसान का हिस्सेदार बनाया जा रहा है, उसी जदयू के आने से एनडीए बिहार में सत्ता में आई तो उनकी पार्टी को हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली। इस सीधे सवाल पर जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने बीबीसी से कहा,
नहीं देखिए, उपेंद्र जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने इस्तीफे की खबर को दरकिनार किया। उन्होंने एनडीए में मजबूती की बात कही, उन्होंने बिल्कुल विश्वास दिलाया कि वो एनडीए में है और बने रहेंगे, और ये जो सत्ता में लाभ की बात है वो एक पासिंग फ्रेज की तरह उन्होंने कहा, इसको इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। एनडीए में किसी को किसी कोई पद या किसी निष्ठा की लालच नहीं है, सबको यहाँ पे निस्वार्थ भाव से बिहार प्रदेश की सेवा के लिए लगे हुए हैं।
उपेंद्र कुशवाहा सम्मानजनक सीटों की मांग कर क्या भाजपा पर दबाव बना रहे हैं, इस सवाल पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का कहना है,
हमारी प्रतिक्रिया इतना ही है कि बिहार एनडीए इंटैक्ट है, हम सब मिलजुल कर लड़ेंगे, सीटों के बंटवारा में कहीं कोई नहीं है, बिहार एनडीए आपस में मिलकर हम सब चुनाव लड़ेंगे, 40 की 40 सीटें जीतेंगे।
वहीं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा का कहना है कि अमित शाह के रवैये के कारण सीटों का बंटवारा सभी एनडीए दलों के लिए गले की फांस बन चुका है, ऐसे में रालोसपा और लोजपा जैसे दलों को उनका ये न्योता भी है।
हमारा सीधे तौर पर मानना है, हम संख्या में बात नहीं करते हैं, हम मूलतः समता मूलक दल है। साथ आइए अभी आने वाली धारा सामाजिक न्याय की धारा, ये हमारे स्वाभाविक नेत्र है। स्वाभाविक नेत्र के साथ आइएगा तो दिक्कत परेशानी के साथ खटिया बिछा करके एक कमरे में साथ रहेंगे।
हालांकि इन प्रस्तावों से इतर कल उपेंद्र कुशवाहा ने दोहराया कि वे एनडीए में हैं और इसी में रहते हुए नरेंद्र मोदी को दोबारा 2019 में प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि भविष्य में उनका एनडीए में रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा उनकी सम्मानजनक सीटों की मांग का कितना सम्मान करती है। मनीष शांडिल्य, BBC, पटना।
राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शुमार है और ये चुनाव में प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी सरकार के अनुसार इस योजना से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं, लेकिन विपक्ष इसे घोटाला बता रहा है। सामाजिक संगठन भी इस योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
जान है तो जहान है, राज्य में बीजेपी सरकार ने शायद यही सोचकर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की थी। सरकार का दावा है कि इस योजना के बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते लोगों को बड़ी मदद मिली है। इससे पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी मुफ्त दवा योजना शुरू की थी, लेकिन बीजेपी का दावा है कि भामाशाह योजना अधिक व्यापक है। पर गाँव कस्बों में लोग कहते हैं सरकारी अस्पतालों में पूरी दवा नहीं मिलती है।
नहीं मिलती है, बराबर दवाई नहीं देता है, ज्यादा बीमारी बिलवाड़ा।
नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं है,
नहीं
मिले, सब झूठी बात है।
चाराना भी नहीं मिलती,
चाराना छोड़ पांच भी नहीं मिले। प्राइवेट में करावा या बंगाली फंगाली अगर करावा या ब्यावर ले, तो प्राइवेट में ले जाओ, रख ले जाओ।
मुफ्त दवा तो देती तो है सब, पर कम देती है, नाम मात्र के लिए देती है। जो थोड़ी सी भारी होती है ना, जिसका पैसा ज्यादा लगता है, वो बाहर से खरीदवा, मतलब पूरी दवाइयाँ मुफ्त में नहीं मिलती है, फिर बाहर से लाते हैं। वो डॉक्टर ही लिखते थे, अलग से पर्ची में लिख के देता है।
वो तो नहीं मिलते, पैसे देते तो मिलती हमको, इलाज करावा तो आगे ले जाओ, ज्यादा बीमारी बता आगे ले जाओ, टेम्परेली गोलियां लेनवा, इलाज करावा फोरन फोरन पैसा खूब ली, ने इलाज फ्री में तो नहीं सरकारी स्कूलों में अना अस्पतालों में।
चित्तौड़ में डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता उन लोगों में शामिल है जो सालों से मुफ्त इलाज के लिए अभियान चलाते रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता मायूसी के साथ कहते हैं,
हर अस्पताल में हर चीज का इलाज इसके अंदर नहीं है। इसकी जो प्रक्रिया है इससे लाभ लेने की, वो अपने आप में बहुत जटिल है, और इसके कारण से बहुत सारे जो लोग जिनको कि इसको मिल जाना चाहिए लाभ, वो लाभ इनको नहीं मिल रहा। कि जब ये 2015 में इसको प्रारंभ किया गया था, तो प्रति परिवार जो बीमा राशि थी वो 375 रुपये, जब 2017 में इसका सेकंड फेज चालू किया गया तो वो बढ़ के 1215 रुपये हो गए। और 1215 रुपये हो जाने के बावजूद भी अनेक परिवार ऐसे हैं, और ख़ासतौर से जो अति निर्धन परिवार हैं जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उनको इस योजना का कतई कोई लाभ नहीं मिला।
सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे इस योजना पर सवाल खड़ा करते हैं।
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के हमारे सामने बहुत केसेस आए कि अमीर आदमी है तो फिर भी वो प्राइवेट अस्पताल का सामना कर सकता है, गरीब जाता है कुछ चीज़ का इलाज लेने, वो लिखते कुछ और हैं, उनको पता भी नहीं है क्या हो रहा है। सरकार भी लूटी जा रही है, लोग भी लूटे जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल और उनके साठ गांठ करने वाले ठेकेदार आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें ना शिक्षा में ना स्वास्थ्य में कोई प्राइवेट चाहिए, हमें चाहिए सरकारी, हमें चाहिए ढंग से हो, और सरकार भी लोग भी अपने अपने परिजनों को सरकारी अस्पताल में भेजे, अपने आप ठीक हो जाएगा।
इस योजना को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की जंग में उलझे हुए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा कहती है,
देखिए भामाशाह योजना सबसे बड़ा स्कैम है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, क्योंकि इसमें 1200 करोड़ से रुपयों से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, और इंश्योरेंस कंपनी है उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता में जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। और इसके अलावा जो भामाशाह को PDS से लिंक किया गया, उससे बहुत से ऐसे लोग हैं जो वंचित रह गए हैं, जिनके बायोमेट्रिक्स नहीं मिलते, तो भामाशाह एक तरीके से वसुंधरा सरकार की योजना है जिसमें जनता को समर्पित बताकर जनता के शोषण को अंजाम दिया।
बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा कहते हैं यह योजना वरदान साबित हुई है। वे कहते हैं प्रतिपक्ष सच्चाई से आंख मूंदना चाहता है
कि आज भामाशाह जो योजना है उसके माध्यम से 27 लाख आम नागरिकों को लाभ मिल चुका है। 27 लाख का मतलब ये हुआ लगभग 1.25 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। देखिए अगर हम किसी अस्पताल में जाके इस बारे में चर्चा करें, या मैं कांग्रेस के नेताओं को सलाह देना चाहूंगा कि आप ज्यादा दूर मत जाइए, जयपुर के शहर के बड़े अस्पतालों में जाके देखिए, प्राइवेट अस्पतालों में आज वहाँ लोग लाभान्वित होकर बड़े प्रसन्न होकर जा रहे हैं। अभी तक हम लगभग 26 लाख बिलों को पास कर चुके हैं और लगभग 5 लाख बिल ऐसे हैं जो सरकार के पाइपलाइन में पेंडिंग है। तो लगभग ऐसा मोटा मोटा आइडिया कि पिछले 5 साल के अंदर 31 लाख व्यक्ति भामाशाह योजना से लाभान्वित हो चुके। उसके बावजूद अगर कांग्रेस आरोप लगाती रही, उनकी ओछी मानसिकता है।
हर दिन हजारों लोग इलाज के लिए अस्पतालों की देहरी तक पहुंचते हैं। इनमें किसी की जेब फटी होती है तो कोई गरीबी की बीमारी से खांसते हांपते अस्पताल तक पहुंचता है। निर्धनता से अभिशप्त मानवता की इतनी सी मुराद है कि कोई सांस पैसे और इलाज की कमी से ना उखड़े। नारायण बारेट, BBC जयपुर।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। गुरप्रीत सैनी स्टूडियो में दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ हैं। अगर ये जो लगभग सब अखबारों पे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो यूनिटी है उसके विज्ञापन ही नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा और क्या खास नज़र आ रहा है?
जी और देखा जाए तो ज़्यादातर अखबारों में खबर दिख रही है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रिजर्व बैंक पर 2008 से 2014 के बीच आर्थिक कोताही बरतने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अंधाधुंध कर्ज देने वाले बैंक पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने को लेकर रिजर्व बैंक की उन्होंने आलोचना की है। जब ये ऐसे वक्त में उन्होंने कहा है जब केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को लेकर वित्त मंत्रालय और RBI के बीच तनाव बढ़ने की रिपोर्ट आ रही है
जी।
इसके अलावा सभी अखबारों में खबर दिख रही है कि साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद, श्रीकांत पुरोहित समेत 7 पर आरोप तय कर दिए गए हैं। NIA कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को चरमपंथी साजिश रचने और हत्या समेत अन्य मामलों में नामजद किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। इसके अलावा जनसत्ता अखबार में एक हेडलाइन दिख रही है कि राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद की पहलकदमी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अभियान शुरू कर दिया है। इस क्रम में विश्व हिंदू परिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मिलेंगी। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि नवंबर में परिषद देश के सभी क्षेत्रों के सांसदों से भेंट करेगी और उनसे कहेगी कि उनके मतदाता अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं, ऐसे में वो कानून बनाने में सहयोग करें।
जी गुरप्रीत, ये बहुत अखबारों में प्रमुखता से खबर छपी है दिल्ली की कि यहाँ पर हवा की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। नवभारत टाइम्स ये लिखता है कि प्रदूषण से दिन भर 10 सिगरेट जितना नुकसान हो रहा है और हालात बिगड़े तो प्राइवेट गाड़ियां बैन हो सकती हैं। और दैनिक भास्कर ये लिखता है कि सरकार ने ये कहा है कि इतनी खराब हवा हो चुकी है दिल्ली की कि लोगों को अगरबत्ती तक नहीं जलानी चाहिए।
जिसके अलावा एक और अहम खबर हिंदुस्तान टाइम्स में दिख रही है कि साल 1970 से 2014 के बीच यानी 44 साल में इंसान की गतिविधियों की वजह से रीढ़ की हड्डी वाले 60% जानवर कम हो गए हैं। इनमें मछली, पक्षी, पानी में रहने वाले जीव, रेंगने वाले जंतु और स्तनधारी जानवर शामिल हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत। बच्चे बाहर खेलें कूदें तो ये माना जाता है कि उनके लिए ये अच्छा है, मगर यही खुली सांसें बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रदूषण से 1 साल के अंदर लाखों बच्चों की जानें गई हैं। सुनिए BBC संवाददाता कमलेश मठेनी की रिपोर्ट।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में 5 साल से कम उम्र के 1 लाख से ज्यादा बच्चों की प्रदूषण के कारण मौत हो गई है। इस रिपोर्ट का नाम है एयर पोल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रेस्क्राइबिंग क्लीन एयर। इसमें बताया गया है कि बाहर की हवा में मौजूद पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के कारण 5 साल की उम्र के बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर प्रदूषण बच्चों के लिए कैसे जानलेवा साबित होता है। इस बारे में गंगाराम अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता बताते हैं कि कुछ बच्चों में पहले से ही फेफड़ों की समस्या होती है। इनमें प्रदूषण बीमारी को बढ़ा देता है और जानलेवा स्तर तक ले आता है। इसके कारण बच्चों के विकास पर भी असर पड़ता है। साथ ही छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है और उनके अंगों का विकास नहीं हुआ होता। ऐसे बच्चों के बारे में वह कहते हैं,
यही बच्चे जो होते हैं, क्योंकि ये स्कूल गोइंग एज के होते हैं, मॉर्निंग में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है जब उनके स्कूल का टाइम होता है। रोड पे जो पोल्यूशन होता है वो सबसे नीचे आके सेटल होता है, तो जब पेशेंट की हाइट कम होती है तो दे आर मोर एक्सपोज फॉर द पोल्यूशन। एंड थर्डली लंग इमेच्योर होता है, इमेच्योर लंग होने की वजह से इनके अंदर परमानेंट डिजीज सेटल होने के हाई चांसेस होते हैं। इनफैक्ट बहुत हाई पोल्यूशन लेवल होता है तो ये नॉर्मल बच्चों में भी स्पाज्म आ जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं इसमें, उसको सांस की प्रॉब्लम होने लगती है।
रिपोर्ट में बाहरी और घरेलू प्रदूषण के प्रभाव को अलग से आंका गया है। घरेलू प्रदूषण में घर में कोयला और लकड़ी से खाना बनाने में होने वाला धुआं, धूम्रपान, परफ्यूम और एसी से होने वाले प्रदूषण को शामिल किया जाता है। इसे भी बेहद खतरनाक माना जाता है। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि गर्भ में मौजूद बच्चे पर भी प्रदूषण का असर पड़ता है। इसके कारण समय से पहले भी प्रसव हो सकता है। मैक्स अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता चांदना इस बारे में बताती हैं।
ये जो पोल्यूशन में जो पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, जैसे ये कण वहाँ पहुँच जाते हैं प्लेसेंटा में जाके, वो वहाँ पे इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जब वो अननेचुरल चीज वहाँ पहुँचती है तो वहाँ के इन्फ्लेमेशन जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो बढ़ जाते हैं। ये बढ़ने से उधर का जो सर्कुलेशन है वहाँ पे वो जमावट बन जाती है, जिससे कि वो जो ब्लड फ्लो जितना बच्चे को जाना चाहिए, जो पोषण पहुंचना चाहिए, वो रुक जाता है या कम हो जाता है। जब ये ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो क्योंकि बच्चा विकसित इसी ब्लड फ्लो से हो रहा है, जो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो बच्चे में अंग के डिफेक्ट, उसके डेवलपमेंट डिफेक्ट, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाता, उसको खुराक पूरी नहीं मिलती।
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक प्रदूषण का स्तर 397 स्तर पर पहुंच चुका है। दिवाली भी नजदीक है और इससे हालात और खराब होने की आशंका है। इसे देखते हुए डॉक्टर घरेलू प्रदूषण को कम करने, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी वाले पोषक आहार देने और बाहरी प्रदूषण के कारणों पर नियंत्रण पाने की सलाह देते हैं।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल मुंबई में चौथा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया, जहां भारत ने 224 रन से जीत दर्ज की। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज खलील अहमद को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए चौथे वनडे मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC से ऑफिशियल वार्निंग मिली है। खलील अहमद को 14वें ओवर में सैमुअल्स के आउट होने के बाद कुछ कहते हुए सुना गया था। अब भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मुकाबला होगा 1 नवंबर को, और फिलहाल जहां तक इस श्रृंखला की बात है तो भारत 2-1 से आगे है। इस श्रृंखला के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 मुकाबले होंगे। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बारे में वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली का कहना है,
हाँ, करो या मरो वाला तो आप वेस्टइंडीज के लिए कह सकते हैं। वेस्टइंडीज को इजी मत लीजिएगा। अगर आप देखें सामने तो एक बहुत एक्साइटिंग टीम तैयार हो रही है उनकी। टेस्ट क्रिकेट में उनका रेपुटेशन बहुत खराब हो गया है। बहुत अफसोस होता है कि एक वेस्टइंडीज की टीम जो 10 साल तक जिन्होंने हर टीम को रौंदा, आज जो है बहुत कमजोर टीम लगती है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन वनडे क्रिकेट में, और आप देखिएगा इसके बाद जो T20 सीरीज होगी भारत के साथ, उसमें भी आपको मैचेस क्लोज मिलेंगे। और वर्ल्ड कप के लिए मुझे लगता है वेस्टइंडीज को शायद अपना पॉसिबली बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल गया है।
खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करेंगे। इस बीच समारोह का विरोध कर रहे कई लोगों को कथित तौर पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डेनमार्क ने यूरोपीय संघ से ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की मांग की है। डेनमार्क ने दावा किया है कि ईरान उसकी धरती पर ईरान अरब मूल के एक कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचा था, जिसे उसने नाकाम कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिचेल बैचलेट ने सऊदी अरब से जोर देकर कहा है कि वो पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या की जांच कर रही टीम में स्वतंत्र विदेशी विशेषज्ञों को भी शामिल करे। सऊदी अरब ने खुद बताया है कि खाशोजी की हत्या में उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष कुमार ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।